16 ऋषिवर्य दुर्वासा का हस्तिनापुर में आगमन हो चुका था। अत्यंत क्रोधी और सनकी होने के कारण कोई भी उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था, परंतु राजा दुर्योधन स्वयं इतने भक्तिभाव से उनकी सेवा कर रहा था कि इतनी सेवा उसने माता पिता कभी नहीं की होगी। मैं भी महर्षि दुर्वासा से मिलना चाहता था। इंद्रप्रस्थ में राजभवन की भित्ति पर जो चित्र मेरी समझ में नहीं आया था, उसका रहस्य यदि मिल सके तो उसे मैं जानना चाहता था, परंतु अपनी ओर से उनसे मिलने जाना मुझको अच्छा नहीं लगा। अकेले दुर्योधन को छोड़कर अन्य किसी के मिलने की मेरी इच्छा भी नहीं होती थी। आखिर एक दिन दुर्वासा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, वो भी दुर्योधन के ही आग्रह कारण। अपने तत्पर सेवा भाव से उसने दुर्वासा जैसे ज्वालामुखी को भी मंद मंद जलने वाले ज्योति में रूपांतरित कर दिया था। जरा जरा से बात पर क्रोध से बरस पड़ने वाले दुर्वासा ऋषि दुर्योधन से बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहे थे। दुर्योधन ने किस जादू से उनको अल्पावधि में ही अपने वश में कर लिया था, यह एक महान आश्चर्य ही था। एक दिन उसके आग्रहवश मैं उसके साथ गंगा तट पर स्थित ऋषिवर्य की पर्णकुटी में गया, जहाँ यह मैंने निश्चय कर लिया था कि अपनी ओर से मैं कुछ नहीं कहूँगा। हम लोग जिस समय वहाँ पहुँचे, उस समय वे पद्मासन लगाए एक व्याघ्र चर्म पर ध्यानस्थ बैठे हुए थे। लकड़ी के कुंदे जैसे उस शरीर से सभी लोग इतना क्यों घबराते हैं, यह मैं समझ नहीं पाया। लगभग आधी घड़ी बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। तत्परता से आगे बढ़कर दुर्योधन उनके चरणों पर मस्तक टेक दिया। दुर्योधन भी किसी के आगे अपना मस्तक झुकाता है, यह आश्चर्यजनक सत्य मैंने जीवन में पहली बार ही देखा। दुर्योधन ने भले ही उनके आगे मस्तक झुकाया हो, परंतु उन्होंने अपनी आंखें एकटक मुझ पर ही लगा रखी थी। उस शरीर में कितना सामर्थ्य था, यह उनकी आंखों की ओर देखकर ही ज्ञात हुआ। सूर्यकिरणों में चमकने वाली पुखराज की मणि की तरह उनकी आंखें चमक रही थीं। कर्ण धनुष के टंकार का सा एक शब्द उनके ओठों से बाहर निकला। हाँ, कर्ण ही, मेरा परम मित्र अंगराज कर्ण, ऊपर उठते हुए दुर्योधन ने उत्तर दिया। तेरा मित्र अंगराज? राजा, यह किसी का भी मित्र नहीं है, अंगराज भी नहीं है, यह केवल कर्ण है। संसार उसको कर्ण के रूप में जानता है और अनंत काल तक कर्ण के रूप में ही जानता रहेगा। वे संक्षेप में और असंबद्ध कुछ कह रहे थे। यह उनके सनकी स्वभाव के अनुकूल ही था। एक बार मेरी इच्छा हुई थी कि उनको वंदन करूं, परंतु ऐसे सनकी व्यक्ति के सम्मुख न होने के लिए कर्ण का मस्तक नहीं है, यह सोचकर मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहा। दुर्योधन ने उनसे उनकी आवश्यक वस्तुओं की सूचना राजभवन में भेज देने के लिए प्रार्थना की। हम फिर पर्णकुटी से बाहर आए। दुर्योधन विचार मग्न था। दुर्वासा ऋषि के मेरे संबंध में जो कुछ कहा था, उसका चिंतन करता हुआ मेरी मित्रता के विषय में वह कदाचित उलझन में पड़ गया था। उसके कंधे पर हाथ रखकर चलते चलते ही मैं उससे बोला, यह भस्म विभूषित ऋषि, हमारी मित्रता पर टीका टिप्पणी करने वाला कौन होता है? तुम अपनी मित्रता को कमठल्लू के जल की तरह चंचल समझते हो क्या? समय आने पर मैं एक बार कवच और कुंडलों का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु सूर्य प्रतिमा के सम्मुख तुमको जीवन आजीवन स्नेह का जो वचन दिया है, उसको मैं कभी भंग नहीं होने दूंगा। नहीं राधे, तुम्हारे वचन प्रीता मुझको तिल भर भी संदेह नहीं, मैंने उसका विचार भी नहीं किया है, परंतु द्रौपदी के वस्त्र हरण से उत्तेजित पांडव 14 वर्ष बाद तो निश्चय लौटेंगे। लौटने तो फिर द्यूत का निमंत्रण देकर युधिष्ठिर को फंसा लेना, एक कल्पना मुझे सूझी है। तुम यदि उससे सहमत होगे तो मैं उस पर आचरण करूंगा। कैसी कल्पना? दुर्वासा ऋषि का वड़वा नल में पांडवों पर डालना चाहता हूँ। इसी तत्परता से मैं उनकी सेवा व्यर्थ ही नहीं कर रहा हूँ, इतना मूर्ख नहीं हूँ मैं। दुर्वासा पांडवों का क्या करेंगे? 5 पर्वत जैसे एक जुट योद्धाओं को तुम बलवज की सूखी लकड़ी से उखाड़ना चाहते हो? तुम्हारी यह कल्पना अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आई, बल्कि मुझको तो यह कुछ हास्यास्पद ही लगी। नहीं, वह हास्यास्पद नहीं है। दुर्वासा अपने 16,000 शिष्यों के साथ दैत्यवन में पांडवों की पर्णकुटी की ओर जाएंगे, और जब ये उस पर्णकुटी के सामने अड्डा जमा देंगे, तब आतिथ्य करने के लिए पांडवों को उन सब के भोजन की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। और उस निर्जन अरण्य में वे वह व्यवस्था कैसे करेंगे? उस स्थिति में यह कुपिष्ठ ऋषि क्रोध से उनको शाप दग्ध कर देगा। तुम्हारा यह क्या विचार है? दुर्योधन, अपनी समझ के अनुसार तुम चाहे जो कहो, मैं तो तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि वास्तव में यदि तुम पांडवों का विनाश करना चाहते हो तो यही अनुकूल समय है। पांडवों का प्रताप क्षीण है, अभी अचानक आक्रमण करके उनको सदा के लिए नष्ट कर डालो, वह तो सबसे अंतिम मार्ग है। चलो, आज दुर्वासा प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, आज ही उनसे वचन ले लिया जा सकता है। मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझको उस सनकी ऋषि के पर्णकुटी की ओर फिर मोड़ा। द्वार से भीतर घुसते ही पुनः वंदन कर हाथ जोड़कर दुर्वासा के सामने खड़ा हो गया। कहो, क्यों लौट आए, क्या चाहिए? भाव में ऊपर करते हुए ऋषि ने पूछा। गुरुदेव, एक प्रार्थना है। प्रार्थना क्यों करता है? वर मांग। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरी एक ही इच्छा है कि जब तक चाहें तब तक यहाँ रहें, उसके बाद हिमालय की ओर लौटते समय आप अपने शिष्यगणों के साथ द्वैतवन में पांडवों के यहाँ भी एक सप्ताह रहने की कृपा करें। बस इतनी सी बात? अरे, एक सप्ताह क्या, हम तो एक पक्ष तक उसके यहाँ ठहर सकते हैं। दुर्योधन छड़भर हंसा, कमर झुकाकर ही वह पर्णकुटी से बाहर जाने लगा। मैंने द्वार से अलग हटकर उसको निकलने के लिए मार्ग दिया। मेरे हटने के कारण दुर्वासा ऋषि ने मुझे भी देख लिया। बोल कर्ण, तुझको क्या चाहिए? उनकी भाव फिर ऊंची उठ गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दुर्योधन के पीछे पीछे पर्णकुटी की निजी चौखट से बचने के लिए मैंने झुक कर बाहर निकलता हुआ मैं धीरे से बोला। फिर भी भीतर से आज्ञार्थी स्वर आया, कर्ण। दुर्योधन ने मुझको हाथ से पुनः भीतर जाने का संकेत किया। अनिच्छापूर्वक केवल उसकी बात मानने के लिए मैं पुनः भीतर गया। कर्ण, मैं जो कुछ कहता हूँ यह ध्यान से सुनो। आजकल सूर्य को अर्घदान करने की तू उपेक्षा कर रहा है, संभल। प्रतिदिन रात में एक चषक में जल ले, उसमें सभी वर्ण के कमल पुष्प रखकर प्रातःकाल उस कमल जल में सुवर्ण पत्तियों की भस्म मिलाकर नियमपूर्वक पान करता रहा। मैं अत्यंत चकित होकर पर्णकुटी से बाहर आया। मैं अर्घदान की उपेक्षा कर रहा हूँ यह बात इन तपस्वी कैसे ज्ञात हुई, और मैं अर्घदान करता हूँ यही इनको कैसे मालूम हुआ? ये सारे रहस्य एक दूसरे का हाथ पकड़कर अकेले मेरे ही चारों चक्कर काटते हुए कब तक नाचते रहेंगे? इसके लिए नगर में अन्य कोई योद्धा क्या इनको मिला ही नहीं? स्वर्ण जल का यह महत्वपूर्ण रहस्य मुझे को बताने की इच्छा इन दृढ़ दाढ़ी वाले ऋषि को क्यों हुई? उन्होंने यह दुर्योधन को क्यों नहीं बताया? 17 पूरे 2 महीने हस्तिनापुर में ठहर कर ऋषिवर दुर्वासा ने नगर छोड़ दिया। इस बीच में केवल 2 ही व्यक्ति से मुक्त मन से बोले थे, दुर्योधन और अश्वत्थामा से। मैं तो फिर कभी उस विचित्र ऋषि की पर्णकुटी की ओर गया ही नहीं, लेकिन उनके कथनानुसार बिना भूले नित्य प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व सुवर्ण जल का पान करने लगा। अर्घदान का कार्यक्रम तो थोड़ा सा शिथिल हो गया था, वह भी ठीक हो गया। दुर्योधन का संकेत पाकर प्रभंजन भी दुर्वासा के पीछे पीछे द्वैतवन की ओर चला गया था। रक्ष, काम्यक, हिमालय आदि सभी पर्वतों पर स्थित अपने आश्रमों के सहस्त्रों शिष्यों के साथ लेकर दुर्वासा ऋषि द्वैतवन में पांडवों के पर्णकुटी के सामने पहुंचने वाले थे। उनके भोजन में थोड़ी सी भी अव्यवस्था होते ही स्वभाव धर्म के अनुसार क्रोध से जटाएं बिखेर कर वे तपस्वी पांडवों को श्राप दे देंगे, और इस समस्त कथा का सविस्तार वर्णन उनके पीछे पीछे टोह लेने वाला प्रभंजन सरपट घोड़ा भगाता हुआ आकर दुर्योधन को बता देगा। परंतु मुझे दुर्योधन की इस कल्पना में कुछ भी रोचकता नहीं लग रही थी। पांडव, यह शब्द सीटी से बजाते हुए मेरे मस्तिष्क में भ्रमण कर रहे थे। पांडवों के अस्तित्व से हृत धैर्य दुर्योधन की दयनीय अवस्था मुझे देखी नहीं जाती थी। उसके कंठ के चारों ओर लपेटे हुए इस पाश को मुझे मुक्त करना था। दुर्योधन और कर्ण, ये दोनों अब एक ही राजमुद्रा के 2 पक्ष बन गए थे। पृथ्वी तल पर या तो पांडव का अस्तित्व रहेगा या फिर कर्ण ही, इस भावना से मुझे दुर्योधन की सहायता करनी थी। 1 महीने बाद प्रभंजन दैत्यवन से राजधानी की ओर लौटा। दुर्वासा और उनके प्रचंड शिष्य समूह के पीछे पीछे सावधानी से यात्रा करते हुए उसने समस्त वृत्तांत हस्तगत किया था। आर्यावर्त के अपने सभी शिष्यों के साथ हस्तिनापुर से चलकर विभिन्न आश्रमों की यात्रा करते हुए 15 दिन में ही ऋषिवर दैत्यवन में पांडवों के पर्णकुटी के सामने जा धमकी। उस विचित्र ऋषि ने प्रतिदिन भिन्न भिन्न प्रकार के पकवानों की मांग कर पांडवों को संतुष्ट करने का प्रयत्न किया, परंतु एक अद्भुत थाली ने सब पर पानी फेर दिया। पांचाली के पास एक ऐसी थाली थी कि उससे प्रत्येक पकवान अपने आप उत्पन्न हो जाता था। सभी उपभुक्षितों की क्षुधा शांत करके ही वह थाली ज्यों की त्यों भरी ही रहती थी। अंत में प्रभंजन ने बताया कि वह थाली पांचाली को सूर्यदेव ने दी थी। दैत्यवन छोड़ते समय स्वयं दुर्वासा ने उस समय रहस्यमय थाली को वंदन किया और श्राप के बजाय पांडवों को वरदान देकर वे हिमालय की ओर चले गए। महर्षि दुर्वासा दुर्योधन को संतुष्ट नहीं कर सके थे। पीठ पर हाथों को बांधकर वह समस्त वृत्तांत को सुनते हुए पिंजरे के बंद शार्दुल की तरह दुर्योधन महल में चक्कर काटने लगा। भाव में तान कर उसने उस विश्वस्त और प्रिय सेवक को फटकारता हुआ वह चिल्लाया, मूर्ख, यह प्रिय समाचार अपने सम्राट को सुनाने के बजाय पूर्वोचन की तरह वहीं जलकर क्यों नहीं मर गया तू? प्रभंजन तत्क्षण थरथर कांपने लगा, परंतु उसका भी क्या दोष था, आज्ञा का पालन तो उसने किया ही था। तू जा, मैंने उसको आज्ञा दी। सिर झुकाकर खिन्न मन से वह चला गया। व्याकुल विह्वल दुर्योधन की ओर चढ़कर एक टक देखता हुआ मैं उससे बोला, राजन, पांडवों के कारण क्या सचमुच इतनी व्याकुल हो उठे? यदि ऐसा है तो राजसभा आमंत्रित कर युद्ध का ही निर्णय तुम क्यों नहीं करते? कोई साथ दे न दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह पर्याप्त लगता है या नहीं? अंगराज, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि गैरिक पर्वत की सुदृढ़ता से पांडवों का सामना करने वाला सिंह किसी छाती वाला एक ही योद्धा आज हस्तिनापुर में है, और वह है कर्ण। तो फिर कभी सत्य न होने वाली सीमर की रुई की तरह अन्य कल्पनाएं क्यों करते? यह तुम कभी नहीं जान पाओगे, परंतु फिर भी तुम्हारे कथनानुसार एक बार आमंत्रित कर कुल योद्धाओं को विचार करने में कोई हानि नहीं है। मेरे विचार से सहमत होकर तुरंत ही कार्रवाई करने का निश्चय कर पहली बार किया जा रहा था। उससे विदा लेकर लौटते समय दुर्योधन से संबंधित एक बात प्रयत्न करने पर भी मेरे मन के प्रांगण में क्षण भर के लिए भी दूर नहीं हो रही थी। ऐसी कौन सी दिव्य भक्ति की साधना कर पांचाली ने सूर्यदेव से वह अद्भुत थाली प्राप्त की थी। यदि सचमुच ही उसकी भक्ति का मार्ग मुझको ज्ञात होता तो बड़ी कठोरता से मैं उसका अवलंबन करता। कोई थाली प्राप्त करने के लिए नहीं, शस्त्रार्थ प्राप्त करने के लिए भी नहीं, केवल मुझे मार्ग दिखलाने वाले उन गुरु के अधिक समीप जाने के लिए, अपने जीवन को अधिक प्रकाशमय कर लेने के लिए। 18 निश्चयानुसार दुर्योधन ने राजसभा आमंत्रित की। इस सभा में सभी सदस्यों की खरी परख होनी थी। पांडवों से आंख में चौली का अंतहीन खेल कब तक खेलना था यह तय होना था। सभागृह पूर्ण होते ही अमात्य ने सभा का आयोजन प्रयोजन बताया। अमात्य के तुरंत बाद दुर्योधन उठा, अपने पुष्ट छोटी उंगलियों की दृढ़ मुट्ठी बांधकर उसने सभी सभासदों को सुनाया, कुछ भी हो जाए लेकिन पांडव कुरुओं के सिंहासन को स्पर्श नहीं कर सकेंगे। आज एक महान रहस्य का भेद में कुरुओं के प्राचीन और पवित्र सिंहासन को साक्षी बनाकर खोल। पितामह महामंत्री विदुर काका महाराज और महारानी कुरुदेव द्रोण और अश्वत्थामन अंगराज कर्ण और महावीर सौण शकुनी मामा राजनीति कुशल कणक आदि सबके सम्मुख में यह कह रहा हूँ, पांडव महाराज पांडु के औरस पुत्र नहीं है। इस भयंकर साप के भय से दिग्विजय महाराज पांडु हंसना छोड़कर अरण्य चले गए थे। वह साप क्या था यह मैं बताता हूँ। सभी सभासद सावधान होकर उसको पुनः सुने। वह साप था, राजन प्रणय की इच्छा से जिस समय तू अपनी स्त्री को अंक में लेगा उस समय मेरी तरह ऐसे ही तड़प कर मर जाएगा। फिर राजमाता कुंती और मातृ को पुत्र प्राप्ति कैसे हो गई? इस सभागृह का एक भी सभासद क्या इस ज्वलंत असत्य का समर्थन करने को तैयार है? पांडव कुंती और माद्री के कलंकित पुत्र हैं। वे महाराज कुरु के इस पवित्र सिंहासन पर अपना अधिकार घोषित करते हैं, तो क्या आप सब लोग उसको स्वीकार कर लेंगे? युद्ध में पांडवों को हराने पर सहानुभूति से जिनके हृदय पिघल उठे थे उनको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि खांडव वन में इंद्रप्रस्थ का राज स्थापित करने की पात्रता पांडवों में नहीं है। इस सभागृह के महाद्वार पर सेवक के रूप में जो भी पांडवों को खड़ा करने का अर्थ है पीढ़ियों से रक्त सिंचित इस पवित्र राज सिंहासन पर काली मां पोतना। बताओ वे सामर्थ्यवान हैं केवल इसलिए पांडवों के आगे नतमस्तक होकर क्या मैं इस राज्य का आधा भाग या खांडव वन का राज्य इंद्रप्रस्थ उनको दे दूं? आकाश को अपने कंधों पर उठा लेने वाले अंगराज कर्ण जैसे महारथी जब कुरुओं की सहायता के लिए उपस्थित हैं तब कुरुओं को पांडवों से भयभीत होने का कारण ही क्या है? मैं तो उनको पांडव कहने को भी तैयार नहीं हूँ क्योंकि उनको पांडव कहने से महाराज पांडु की अवहेलना होती है। मैं तो उनके कौंतेय और माद्रेय कहकर ही पुकारूंगा। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को समय रहते नष्ट करने के लिए मैं आज सभागृह के सभी सभासदों को आमंत्रित करता हूँ। कुरुओं के वीर योद्धाओं जब तक कौंतेय एकाकी और असहाय हैं तभी तक क्या आपको उनका उन्मूलन नहीं कर देना चाहिए? आप ही बताइए। दोनों हाथ अधर में फड़काते हुए उसने सभी सभासदों से प्रश्न किया। दुर्योधन ने जो शब्द फेंके उनसे सभागृह के सभी योद्धा ऐसे उठ खड़े हुए जैसे किसी ने गदा पर प्रहार कर दिया। कुछ लोग तो हाथ उठाकर चिल्लाए, राजन द्वैतवन की ओर जाने वाला मार्ग हमको इसी समय बताओ। कौंतेय नष्ट होने ही चाहिए। महाराज पांडु के पवित्र नाम का निजतापूर्वक उपयोग करने वाला कोई भी प्राणी इस हस्तिनापुर में राज्य में जीवित नहीं रह सकेगा। आवेश में भरे सभी योद्धाओं के कोलाहल से सभागृह गूंज उठा। दुर्योधन की योजना का सभी योद्धाओं ने समर्थन किया। सभी योद्धाओं का इतना ठोस समर्थन राजा दुर्योधन को आज ही मिल रहा था। ठहरो, पाषाण पर जैसे बाण का फल टकराया हो ऐसा तीव्र स्वर आया। थरथराते हुए पितामह ने महाराज धृतराष्ट्र के हाथ से राजदंड अपने हाथ में ले लिया। पहले एक बार अखाड़े में मेरे लिए बोलते समय उन्होंने ऐसे ही वह राजदंड हाथ में ले लिया था। वही आवेश और वही तेज उस वृद्ध शरीर के कंपन से उफन उफन कर बह रहा था। निश्चित ही कोई चौंका देने वाला सत्य सुनाई पड़ेगा। पांडवों के लिए प्रेम भावना सजो रखने वाला या ज्येष्ठ गुरु सबकी एक राय पर पानी फेर देगा। हाथ में राजदंड को ऊंचा करते हुए उस वृद्ध ने शब्दों के जिम्म बाण छोड़े। कुरुओं के योद्धाओं, पिछली आधी घड़ी से दुर्योधन इस सभागृह में जो कुछ कह रहा है वह सब मैं यह दास सदन बना है तब से आज तक किसी दास अथवा दासी ने भी न कहा होगा। महारानी कुंती कलंकित है। इसी सभागृह में विकर्ण ने जिन राजस्त्रियों का उल्लेख किया था उन गिरिजा सुदक्षिणा तप्ती नीलिय नलिनी से या पांचाली से इन सभी राजस्त्रियों में से महारानी कुंती श्रेष्ठ है। इतना ही नहीं वरन आज कोई मुझसे पूछे कि कुरुओं का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है तो अपमान से मैं उत्तर दूंगा कुंती, क्योंकि एक स्त्री होकर भी हिमालय जैसे जिस उत्तुंग धैर्य के साथ उसने अनेक आपत्तियों का सामना किया है वह धैर्य तुम लोगों में से एक भी योद्धा में मुझे दिखाई नहीं दिया। इसीलिए जिस सत्य को मैं जीवन भर अपने हृदय में छिपाए रहा हूँ कुरुओं के वंशा वृत्तांत का वह रहस्यमय सत्य आज विवश होकर मुझको कहना ही पड़ेगा। हाँ, तुम्हारे उफनते हुए क्रोध पर इस सत्य का शीतल जल छिड़कते हुए मेरा मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। जिस राज्य की रक्षा की योजना का नाम लेकर दुर्योधन ने आपको भड़का दिया है, वह राज्य किसका है? कौन है उसके वास्तविक वंशज? धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव या पांडव के 5 पुत्र पांडव? किसको देना चाहिए यह राज्य? इस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार वास्तव में किसका है? यह राजदंड किसके हाथ में रहना चाहिए? संपूर्ण आर्यावर्त को अपने शौर्य से थर्रा देने वाले कुरु योद्धाओं, यह सत्य सुनते समय तुम्हारे हृदय आज विस्मय से विदीर्ण हो जाएंगे कि जिस अनादि कुरुवंश की तुम्हारे पितरों ने सेवा की है, उसके वंशज। अपना शुभ्र किशांकित मस्तक उन्होंने जोर से घुमाया। चारों ओर उत्सुकता पूर्ण शांति छा गई। किसका नाम सुनाई देगा, कौरवों का या पांडवों का? उसके वंशज कौरव भी नहीं है और पांडव भी नहीं। सबने सांस रोक ली। रीढ़ की हड्डी सीधी कर मैं चौकन्ना हो गया। मेरे सारे शरीर पर अभेद्य कवच क्यों है, इस बात पर मुझको उतना आश्चर्य नहीं हुआ था जितना आश्चर्य जीवन भर की धारणा का उन्मूलन कर देने वाले उस महान सत्य को सुनते हुए मुझे हुआ। हम सब क्या सुन रहे थे, उस कथन पर कैसे विश्वास किया जा सकता था? लेकिन कहने वाले तो पितामह थे, अर्थात सत्य ही था। तो फिर कौन है कुरुकुल का सच्चा वंशज? किसी ने धैर्यपूर्वक सभागृह की शांति को भंग किया। मैं, हाथ में थरथराता व राजदंड संभालते हुए पितामह विश्व के रूप में हिमालय का वह उच्च शिखर बोलने लगा। उनका एक एक शब्द जिस शिखर से गिरने वाला भीतिदायक प्रताप प्रपात ही था। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ यह भीष्म ही अंतिम कुरु है जो इस अवस्था में भी आशा के किरण ढूंढ रहा है। कौरव पांडव कुरुकुल उत्पन्न नहीं है, फिर भी वे आज न जाने क्या सोचकर जन्म जन्म के वैरियों की तरह अपने मस्तिष्क एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसके कारण का पता लगाते हुए मेरा मन भीषण हो रहा है। इसीलिए कुरुकुल का सत्य वंश वृत्तांत बताने के लिए ही मैं अपने मन पर भारी पाषाणों का भार रखा हुआ खड़ा हूँ। ध्यान देकर सूर्य की धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर ये एक दूसरे के भाई हैं। उनका पिता एक ही है, पराशर पुत्र व्यास। हाँ, माताएं अलग अलग थी। इस सभागृह में बैठे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र व्यास के वंशज हैं। युवराज दुर्योधन भी, और पांडव पांडु के पुत्र नहीं है। यह उतना जितना सत्य है उतना ही यह भी सत्य है कि वे पाप के भी पुत्र नहीं हैं। महारानी कुंती और मातरी को ऋषिवर दुर्वासा के शक्तिमान मंत्रों से प्राप्त हुए पांडव पाप से उत्पन्न है, यह कौन कह सकता है? और इससे भी अधिक भयानक सत्य यह है कि जैसा कि आप लोग समझते हैं, वैसे पांडव 5 ही नहीं, एक और छठा पांडव भी है। लेकिन वह संसार को कभी दिखाई नहीं दिया। क्योंकि मैंने उसको अपने जन्म से ही दुर्भाग्य के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। उसके लिए मेरा हृदय तिल तिल कर टूटता रहा है। इसीलिए अंतिम बार मैं कहता हूँ, तुम कुरु लोगों के अंतिम कुरु के रूप में कहता हूँ कि जिस राज्य का दिग्विजय पांडु ने विस्तार किया और इस धृतराष्ट्र ने जिसका पालन पोषण किया, उस राज्य को कौरव और पांडव आधा आधा बांट ले। कौरवों का नेतृत्व करने वाले और कुशल गदावीर के रूप में प्रसिद्ध दुर्योधन को कम से कम अपने गदागुरु का आदर्श ही आंखों के आगे सदैव जागृत रखना चाहिए। उसका गुरु बलराम अपने भाई श्री कृष्ण का परामर्श लिए बिना तिनका तक नहीं तोड़ता। कौरव पांडवों को बलराम श्री कृष्ण का संबंध आँख खोल कर देखना चाहिए। और जिस कर्ण का दुर्योधन ने गौरवपूर्ण उल्लेख किया है, उस वीर कर्ण को भी आकाश में 105 सीढ़ियां खड़ी कर उन पर अपना पैर रखने का कर्तृत्व दिखाना चाहिए। इस सभागृह के एक भी सभासद को यह नहीं भूलना चाहिए कि राजमाता कुंती पवित्र हैं और उसके पुत्र तेजस्वी महावीर हैं। थर थर कांपते हुए पितामह नीचे बैठ गए। सभा का काम आगे कैसे चला, इस ओर किसी का ध्यान नहीं था। बाद में महामंत्री विदुर, आमात्य और महाराज बोले, परंतु किसी का भी मन इतना स्वस्थ नहीं था जो उनकी बातें सुनता। हाँ, महारानी गांधारी देवी को अकस्मात खड़ी होते देखकर सबके आश्चर्य की सीमा न रही। वे जैसे तैसे एक ही वाक्य कह पाईं, दुर्योधन अभी चेत जा और पांडवों को वन से वापस बुला ला। आच्छादित आंखों वाला मुख क्षण भर सभागृह पर घुमाकर वे भी आसनस्थ हो गई। सभा विसर्जित हो गई। सभागृह छोड़ते समय मेरा मन केवल एक ही बात की ओर चक्कर काट रहा था। पितामह ने जिसका उल्लेख किया था, वह छठा पांडव कौन था? यदि पांडवों से समझौता असंभव ही हो जाए, तो वह अचानक कहीं से आकर अपने भाइयों की सहायता करेगा क्या? जैसे सभी पांडव मंत्र शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही वह भी क्या मंत्र से उत्पन्न हुआ होगा? कितना सामर्थ्यशाली होगा वह? उसे लड़ते समय मैं कहीं दुर्बल तो नहीं पड़ूंगा? जन्म से ही वह अभागा कैसे है? और अन्य पांडवों को भी सौभाग्यशाली कौन कहेगा? विचारों के आवर्त में मेरा मन शुष्क पर्ण की तरह चक्कर काट रहा था। पांडव और कौरव, इनमें से कोई भी कुरुकुल का नहीं है। पितामह भीष्म यदि अंतिम गुरु हैं, तो राज सिंहासन किसका है? यह प्रश्न क्या अब और अधिक जटिल नहीं हो गया था? कौन सुलझाएगा इस गुत्थी को? मेरे मन के प्रांगण पर शंकाओं के घोड़े स्वच्छंद चौकड़ी भरने लगे। किसको रोका जाए यही समझ में नहीं आता था। सिर झुकाकर बोझिल चरणों को धीरे धीरे रखता हुआ मैं सभागृह के बाहर बने हुए शुभ्र पाषाण के फर्श वाले चबूतरे को पीछे छोड़ता जा रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की किरणें राजप्रसाद की चार दीवारी के ऊपर से फिसलती हुई इस फर्श पर गिरकर बिखरने के कारण एक विचित्र रंग पैदा कर रही थी। मेरे कंधे पर पड़े हुए अतलसी उत्तरी का एक छोर खिसक कर नीचे गिर पड़ा था। वह फर्श पर फहराता आ रहा था। उत्तरी का जो छोर देह पर था वह मैंने चलते चलते ही कलाई के दोनों ओर कसकर लपेट दिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। संसार में किसी के दुख किसी के हृदय में क्यों कसक पैदा करते हैं? यह संसार आखिर है क्या? उत्तरी को अचानक झटका लगा और किसी में उलझ गया होगा यह सोचकर उसको छुड़ाने के लिए मैं मुड़ा। उत्तरी का छोर हाथ में कसकर पकड़े हुए अशोक थामा खड़ा था। मुझको देखते हुए वह हंस पड़ा। मुझको आश्चर्य हुआ। क्षण भर पहले सभा में जो कुछ विचार हुआ था उसका कोई भी परिणाम उसके मन पर क्यों नहीं पड़ा था? किस विचार में डूबे हुए हो इतने? आगे बढ़कर उत्तरी मेरे कंधे पर लपेटता हुआ वह सदैव की बात स्नेह से बोला, विचार में कहाँ? मैंने अटपटा सा उत्तर दिया। इतना उत्तर सुनकर वह मानेगा नहीं यह मैं जानता था। चलो नगर के बाहर कुछ दूर घूम आए, तुम बहुत ही अस्वस्थ दिखाई पड़ रहे हो। नहीं, इस समय कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तुमको यदि संगी की आवश्यकता हो तो सोण को ले जाओ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। सोण और कर्ण में महान अंतर है, मैं कर्ण के साथ जाना चाहता हूँ, चलो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए राजभवन के महाद्वार की ओर उंगली उठाई। विवश होकर मुझको उसके साथ जाना पड़ा क्योंकि मेरे अतिरिक्त किसी अन्य से वह ऐसा आग्रह कभी नहीं करता। उसके साथ चलते चलते महाद्वार की देहरी पार करते हुए ही मुझसे रहा न गया और मैंने उसे पूछा, आज पितामह भीष्म ने जिसका उल्लेख किया था वह छठा पांडव कौन होगा? तुम्हारा क्या विचार है? यह कैसे बताया जा सकता है? पांडव छह हैं इस सत्य पर वास्तव में विश्वास नहीं हो सकता। परंतु चूंकि पितामह ने कहा इसलिए वह निश्चय ही सत्य होगा। यह छठा पांडव कौन है यह जानकर हमें करना ही क्या है? हाँ, वह कैसा होगा यह अनुमान कोई भी कर सकता है। उसने फिर महाद्वार की देहरी पार की, हम लोग पैदल ही नगर के बाहर चल दिए। कैसा होगा वह? अश्वत्थामा जीवन का गंभीर विवेचक था। वह निश्चय ही पांडव जैसा नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा वह? पांडवों से भिन्न उसमें क्या होगा? सब कुछ हो सकता है। वह पांचों पांडवों से अधिक सरस हो, शायद वह उन पांचों से छोटा हो। जिस वातावरण में वह पला होगा वही उसका जीवन होगा, क्योंकि संस्कार ही जीवन है। फूलों के परागदंड में छिपा हुआ कृमि भी सत्संगति से देव मूर्ति पर चढ़ाया जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे विचार बड़े अनुकूल होते हैं, लेकिन किसी किसी के प्रति हमें बिल्कुल स्नेह नहीं होता। कारण ही ऐसा क्यों होता है अश्वत्थामन? मैंने उससे पूछा। किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे विचार बचपन से ही क्या बना करते हैं? प्रसंगानुसार कभी कभी उनमें थोड़ा सा परिवर्तन भी हो जाता है, परंतु बचपन में अनादर की जो भावना बन जाती है वह पैर में कंकड़ लगने के बाद जमे हुए रक्त की तरह होती है। आगे चलकर यह जमा हुआ रक्त ही एक कठिन गांठ बन जाती है। बचपन में जो अनादर की भावना होती है वह युवावस्था में और भावी आयुष्य में और दृढ़ होती जाती है। इस कठिन गांठ के अटल कष्ट से अच्छे अच्छे सशक्त व्यक्ति को भी मैंने लंगड़ा लंगड़ा कर चलते हुए देखा है यंगराज। इसीलिए जीवन के निर्माण में मैं बचपन को एक महत्वपूर्ण काल मानता हूँ। इसका अर्थ यह है कि नवजात शिशु का मन बिल्कुल स्वर्ण थाल जैसा निर्मल होता है, जिसको संसार की मानवीय उलझनों की बिल्कुल जानकारी नहीं होती है। परंतु आसपास की परिस्थितियां अपने अशुभ करों से जब एक बार ही उसका स्पर्श कर लेती हैं तब उन करों के चिन्ह पर थाल पर भी स्पष्ट उभरने लगते हैं। क्या तुम यही कहना चाहते हो? केवल चिन्ह उभरते ही नहीं है राधे, बल्कि स्वर्ण की तेजोमय पृष्ठभूमि में वे भी प्रकाश सूर्य प्रकाश में चमकने लगते हैं। गुणों के साथ ही अनजाने दोष भी प्रकट होने लगते हैं, क्योंकि नवजात शिशु का मन धोकर साफ किए गए सूखने वाले वस्त्र जैसा होता है। नाम को भी कहीं एक भी सुकड़न उस पर नहीं होती, परंतु प्रौढ़ का मन धोने के बाद सूखे हुए सुकड़नों से भरे हुए वस्त्र जैसा होता है। उसमें श्रद्धा का मांगल्य का जो जल होता है वह वाष्प होकर उड़ जाता है, घनीभूत हो जाते हैं केवल उलझे हुए शुष्क धागे कितने सिकुड़ने जैसे उनका कोई अंत ही न हो। द्वेष, तिरस्कार, स्वार्थ, असूया, ईर्ष्णा, दम्भ, ढोंग, क्रूरता, क्रोश, किंकर्तव्यता, अज्ञान, अहंकार, अहंभाव, आसक्ति, आत्मश्लाघा, करुणा, वात्सल्य, ममता, प्रेम, काम, विवस्था, उद्वेग, आत्मपीड़न, मत्सर, मोह, असहनशीलता, निराशा और विफलता, कितने सिकुड़ने हैं ये हर व्यक्ति की जीवन वसन को घेरे हुए। कभी कभी अश्वत्थामा इतनी तेजस्वी बात कहता था कि मेरी इच्छा होती थी कि उसकी बातें निरंतर सुनता ही रहूं। तो फिर इसमें से मार्ग निकलने का कोई उपाय नहीं? ये सिकुड़ने ही क्या जीवन है? इस प्रश्न का वह जो भी उत्तर देगा वह अमृत स्नात और अत्यंत स्वच्छ ही होगा। मार्ग क्यों नहीं है? अवश्य है। तुमने मछुए का जाल देखा है ना? कितना गुत्तम गुत्ता होता है, परंतु उस जाल में इच्छानुसार घूमने वाले मछुए को उसमें फंस कर मरते देखा है कभी तुमने? शरीरस्थ मन के इन असंख्य धागों में कभी न फंसने वाला एक मछुआ तुम में, मुझ में, समस्त चराचर में है। वह कौन है? आत्मा। और इस आत्मा का स्थायी भाव है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ ही है शरीर की चेतना, वह चेतना जो कभी किसी बंधन में फंस ही नहीं सकती। परंतु यह चेतना क्या है, यह जानने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। इसके लिए जीवन पर अटूट श्रद्धा आवश्यक है। कोई ऐसी श्रद्धा का जीवन पालन करने का प्रयत्न करे, परंतु उसकी श्रद्धा को प्रचंड आघात देने वाले सत्य आसपास घिर आए और उसकी श्रद्धा डगमगाने लग जाए तथा इच्छा न होने पर भी वह श्रद्धाहीन हो जाए, तो इसमें क्या कुछ दोष है? यदि दोष हो भी तो वह परिस्थिति का है, यही कहा जाएगा? नहीं राधे, यह नहीं कहा जा सकता। तुमने श्रद्धा का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझा है। मृत्यु के महाद्वार पर भी जिस श्रद्धा पर आँच नहीं आती, वही तो सच्ची श्रद्धा है। सच्चा श्रद्धावान कभी श्रद्धाहीन नहीं होता और न परिस्थिति पर दोषारोपण ही करता है। श्रद्धाहीन व्यक्ति केवड़े के उस व्यर्थ बालों जैसा होता है जो सुगंधित केवड़े के भीतर रहकर भी गंधहीन रहता है। ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष की आयु पाकर भी सचमुच कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी आंखों से तेज की स्फुलिंग बरसने लगे, मुखमंडल प्रमतेज से दीप्त हो गया। श्रद्धा, मनुष्य किस किस पर श्रद्धा रखे और श्रद्धा का ठीक अर्थ क्या है, उसको तेजित कर उसकी वाणी को पुष्पित करना मेरा नित्य का नियम था। श्रद्धा है कटीले जीवन की हरियाली, अपने ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। जिसकी अपने ऊपर, अपने दिव्य स्वरूप पर श्रद्धा नहीं, वह संसार के लिए, औरों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दुर्योधन ने पांडवों को राज्य देने का प्रबल विरोध किया। वह राज्य केवल कौरवों का है, पांडवों का नहीं, इस बात पर उसको मन ही मन श्रद्धा है, इसीलिए तो कदापि नहीं। स्वार्थ का अर्थ अपने ऊपर श्रद्धा करना नहीं है, ठीक यही तो भूल होती है। स्वार्थी सही, लेकिन वह अनुचित कैसे है? प्रकृति ने ही तो यह विचार मनुष्य को दिया है। हो सकता है कि स्वार्थ का विचार करना भूल न हो, परंतु इस विचार की मर्यादा तो होनी ही चाहिए। एक इंद्रिय जीव को देखो, यदि कोई यह निश्चित कर ले कि संसार के सभी रसों का आस्वाद लेना है जी भर कर, और अपने इस इच्छा की पूर्ति के लिए वह जीवन भर राक्षसी प्रयत्न करता है, पर क्या फिर भी उसके जीवन में इसकी इच्छा की पूर्ति कभी हो सकती है? सभी स्वार्थी विचार ऐसे ही करते हैं। चारों दिशाओं में व्याप्त विधाता के इस असीम जगत को कोई व्यक्ति कभी अकेला ही बाहों में भरना चाहे तो यह संभव नहीं, क्योंकि आदिशक्ति ने ही मनुष्य को सभी क्षेत्रों में सीमित कर दिया है। राजभवन के प्राचीर के पास उगे हुए त्रिणांकुर को राजभवन की जितनी जानकारी है, वास्तव में ठीक उतनी ही जानकारी मनुष्य को जगत की है। श्रीफल जितनी मानव की बुद्धि विश्व को अपनी बाहों में कभी नहीं भर पाएगी। तो फिर जीवन आखिर है क्या, केवल एक दुर्घटना? मैंने विषय को थोड़ा बदला। नहीं, जीवन है जन्म मरण के प्रवाह में सतत बहने वाली सरिता, परमात्मा रूपी सागर में मिलने की को व्याकुल मुक्ति के लिए छटपटाती हुई। मुक्ति यानी केवल दो वेदनाहीन मृत्यु, मुक्ति के संबंध में तुम्हारा यही विचार है क्या? नहीं, मुक्ति ही अविरत अखंड प्रकाश, चेतनामय, प्रकाशमय, शरीरहीन, भावहीन अस्तित्व, आत्मा का केवल एकमात्र भाव प्रकाश। आंखें खोलकर यदि अपने चारों ओर देखो तो समस्त सजीव चराचर प्रकाश के एक एक कण के लिए कितना तरस रहा है, यह देखकर तुम दिग्मूढ़ हो जाओगे। कृमि कीटक दीप ज्योति पर ही क्यों टूटते हैं? वनस्पतियां, लता बेलें, त्रिणांकुर सभी अपना अपना मुख आकाश की ओर उठाकर प्रकाश के लिए ही क्यों छटपटाते हैं? यह भूल कर किसी का भी काम नहीं चल सकेगा कि जीवन का स्थायी भाव प्रकाश है। फिर यह प्रकाश मनुष्य को सहज प्राप्त क्यों नहीं है? जीवन का यदि यही मूल उद्देश्य है तो फिर वह इतना दुष्प्राप्त क्यों है? जीवन का उद्देश्य प्रकाश है, परंतु वह एकदम अंतिम उद्देश्य है। उसको प्राप्त करने के लिए अनुभूति आवश्यक है, भिन्न भिन्न प्रकार के भाव विभावों की अनुभूति। विविध अनुभव के लेने के बाद भी मैंने जो ढूंढ रहा हूँ वह यह नहीं है। यह जान लेने के बाद मानव अंत में अपनी अंतरात्मा की ओर मुड़ेगा। इस प्रकार मुड़ने के लिए वह विवश है। मानव जाति के आगे अध्यात्म की ही एक ऐसा अटल मार्ग रहेगा जो उसको विवश होकर स्वीकार करना पड़ेगा। नहीं अश्वत्थामन, काल के कितने पट फाड़ कर भविष्य की एक झलक पाने के लिए मैंने बुद्धि पर बल दिया है, परंतु जिस शुभ दिन का तुमने उल्लेख किया है वह कभी उदित होगा, इस पर मैं ही क्या कोई भी विश्वास नहीं करेगा। ऐसा मुझको लगता है, आशा आकांक्षाओं को हृदय में लगाकर दौड़ते रहने में क्या रखा है? अब भी तुम भ्रम में ही पड़े हुए हो, लेकिन इसमें तुम्हारा दोष नहीं। वास्तव में मानव का मन ही बड़ा विचित्र है, रथ के चक्र की तरह। इस चक्र में अनेक आरे होते हैं, परंतु सच्चा आलोचक उस विशिष्ट धुरे पर ध्यान देता है, उसके चारों ओर ये आरे घुमा करते हैं। तुम्हारा कहना है कि भविष्य की एक झलक पाने के लिए तुमने काल के असंख्य पट फाड़ कर देखे हैं, परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या वास्तव में ही काल के असंख्य पट होते हैं, या हम अपनी सुविधा के लिए दिन महीना ऋतु और वर्ष इस कारावास में काल को व्यर्थ ही बंद करना चाहते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि भवितव्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक भयानक भूल है। थोड़ी गंभीरता से विचार करके देखो, काल कभी भूत और भविष्य होता है क्या? काल अखंड है, और अखंडत्व का ज्ञान ही वास्तव में मनुष्य को निर्भय कर सकता है। उसकी दिव्य प्रज्ञा उमड़ उमड़ कर बहने लगी। बातें करते करते हम नगर के से आधा योजन दूर आ गए, इसका हमें पता ही न चला। नगर के बाहर स्थित विष्णु मंदिर आ गया। जब आए तो दर्शन करके ही जाएं, या सोचकर हमने मंदिर में प्रवेश किया। संध्या घिरती आ रही थी। गुलाबी रंग की पश्चिमी क्षितिज की पृष्ठभूमि पर कुछ सारंग पक्षी कोलाहल करते हुए घरों की ओर लौट रहे थे। दर्शन करके हम मंदिर से बाहर आए। अश्वत्थामा ने गर्भगृह का जो घंटा बजाया था, उसके अनुकंपित कुछ गूढ़ रम्यस्वर मेरे कान में गूंज रहे थे। मंदिर से बाहर आते ही ऊपर देखते हुए उसने शिखर की ओर अपनी उंगली उठाई। वह देखा क्या? अचल खड़े होकर उसने पूछा। हाँ, अस्त होते हुए किरणों में शिखर का पर रखा स्वर्ण कुंभ चमक रहा है, बड़ा आकर्षक लग रहा है। नहीं, शिखर पर रखे स्वर्ण कुंभ के बारे में नहीं, उसके नीचे मंदिर के सिर पर पाषाण की पतली सी दरार में हाल ही में उगे हुए पीपल के उस पौधे को देखो, क्या उपयोग है उसका? उपयोग तुम्हारी दृष्टि में भले ही न हो, परंतु मेरी दृष्टि में बहुत है। सुकोमल लाल पत्तियां हिलाकर वह कह रहा है कि इस पाषाण के माथे पर पैर रखकर भी मुझको जीना है, हवा के झोंकों से जूझना है। प्रतिकूलता के पाषाण क्या कि एक साधारण पौधा भी सिर झुकाने को तैयार नहीं है इस प्रकृति में, और मनुष्य है कि कहते कहते वह बीच में ही रुक गया। हम लोग नगर की ओर मुड़े। मार्ग में ही युद्धशाला आई जहाँ उसकी पर्णकुटी थी। प्रेमपूर्वक मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर वह थपथपाता हुआ बोला, राधे भूल जाओ सब जो कुछ मैंने कहा है, न तो मैं कोई बड़ा ब्रह्मज्ञानी हूँ और न तुम्हारा ही जन्म जीवन के गूढ़ रहस्यों पर विचार करने के लिए हुआ है। तुम्हारा जन्म केवल कृत्य के लिए है, क्योंकि जीवन के जिस मार्ग पर तुम चलते आए हो वह केवल देदीप्यमान कृत्यों से ही भरा हुआ है। मेरा हाथ छोड़कर वह युद्धशाला के महाद्वार के पुरुष भर ऊँचे उपद्वार से भीतर चला गया। उस ठीकरे उपद्वार को पार करते समय उसके सिर पर बंधा हुआ वस्त्र द्वार के चौखट से कुछ छू गया। क्षण में ही वह द्वार के पीछे अंतर्धान हो गया। कितना गंभीर विवेचन था उसका। जीवन के अनेक प्रश्नों को वह समय समय पर मुझको बताया करता था। उसने जाते जाते कहा था, तुम्हारा जन्म केवल कृत्य के लिए ही है। यह तो सभी का जन्म कृत्य के लिए ही होता है, परंतु फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ढंग से जीवन का अर्थ लगाता रहता है। मैं लौटा। राजभवन के प्राचीर से अंदर आते समय अश्वशाला में पिताजी दिखाई दिए। वे घोड़ों को खाद्य देने वाले सेवकों को कुछ आदेश दे रहे थे। वृद्धावस्था के कारण अब उनका शरीर जर्जर हो गया था, कमर झुक गई थी, परंतु मन का उत्साह अभी ज्यों का त्यों था। मैं उनसे कई बार अच्छी तरह कह चुका था कि अब आप विश्राम करें, परंतु उनका एक ही निश्चित उत्तर था, वसु शरीर थक जाता है परंतु मनुष्य का मन कभी नहीं थकता, उसको तो कुछ न कुछ उद्योग चाहिए ही। उनके बताए हुए ऐसे ही मौलिक विचारों से मेरा जीवन निर्मित हुआ था। उन्हीं की अपार कष्टों से मेरे जीवन की पर्णकुटी का एक भव्य राजभवन में परिणित हो गई थी। जहाँ तक मेरी जानकारी थी, निखिल आर्यावर्त में मैं पहला ही ऐसा सुतपुत्र था जिसके सिर पर स्वर्ण किरीट रखा गया था, और उसका एकमात्र श्रेय मेरे माता पिता को था। संपत्ति, कीर्ति, पारिवारिक सुख, पुत्र सुख, सभी कुछ मेरे चरणों पर लौट रहा था, परंतु इन सब से अधिक सुख मुझे माता पिता ही की इतने लंबे समय तक मिली हुई इसने छाया नहीं प्रदान किया था। भवन पर सभी लोग राधा माता को राजमाता कहते थे। यह सुनकर विशाल मेरे प्रति प्रेम से अभिभूत होकर मुझसे कहती थी, आपके कारण ही सब लोग उन्हें राजमाता कहते हैं। परंतु वह बांवरी क्या जाने कि मेरी माता के कारण ही सब लोग मुझको कर्ण कहते थे, अंगराज कहते थे, महाराज कहते थे। इसीलिए मैं अश्वशाला में गया। सिर झुकाकर मृदु स्वर में मैं बोला, पिताजी आपको यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? इन सब कामों को सेवक अच्छी तरह कर ही रहे हैं, और फिर उनके ऊपर देखभाल के लिए संजय काका है ही। डगमग करते हुए ग्रीवा संभालते हुए वे बोले, कौन? वसु? बेटा जन्म भर की आदत इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता हूँ। तू छोड़ देगा अपने हाथ के धनुष बाण? भवन में मन नहीं लगता है, घोड़ों में रहा हूँ, घोड़ों में बड़ा हुआ हूँ, इनका खुर फुर करना ही मेरा संगीत है। देख तो यहाँ कितने प्रकार के घोड़े हैं, उनकी ओर देखने मात्र से मेरा मन संतुष्ट हो जाता है। परंतु अब संध्या हो गई है, अब भवन में चलिए, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। चल, उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया। मेरे हाथ का आधार लेकर वे चलने लगे। ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते जितनी बन सके उनकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य था। मेरे कंधे पर भार डालते हुए राजभवन की एक एक सीढ़ी वे धीरे धीरे चढ़ने लगे। जिस दिन मैं हस्तिनापुर में आया था उस प्रथम दिन भी उनका हाथ पकड़ के ही मैं सीढ़ियों पर चढ़ा था। आज वे मेरे कंधे पर आधार लेकर उन पर चढ़ रहे थे। 19 पिताजी को उनके मन में पहुंचाने के लिए मैं गया। वहां राधा माता को घेर कर सुषेण, ऋषिकेतु, सुशर्मा व मीनाक्षी ये सब बैठे हुए कथा सुन रहे थे। मुझको देखते ही सबके सब आनंद से तालियां पीटने लगे। सबसे छोटा ऋषिकेतु तो दौड़ता हुआ आया और मेरे ही पैरों में लिपट गया। और यह सब पर्याप्त समझदार हो चुके थे। अवस्था छोटी होने पर भी मेरे वे पुत्र हृष्ट पुष्ट होने के कारण बड़े प्रतीत होते थे। मेरे प्रति उन सबके मन में जितना भय था उतना आदर था, उतना ही प्रेम भी था। ऋषिकेतु के सिर पर हथेली फिराते थपथपाते हुए मैं बोला, इनकी तरह तू कब बड़ा होगा, हम छोटे ही रहेंगे। वह तोतरे स्वर में बोला, क्यों रे, बड़े लोगों को मां माता को नमस्कार करना पड़ता है, मैं तो उनकी गोद में बैठता हूँ। छोटे होने से उसको जो लाभ थे वे बड़े रोचक थे। उसको उठाकर मैंने स्नेह से उसके मस्तक का अवग्रहण किया। उस नटखट ने भी दोनों हाथ से मेरे कुंडलों को सदैव की भांति हिलाए डुलाए। राधा माता को अभिवादन कर मैं वहां से चल दिया। नातियों से रमे हुई माता को देखकर मैं धन्य हो जाता था। मेरा शरीर रोमांचित हो उठता था। मैं अपने महल में आया। पाकशाला में भोजन तैयार करने में लगे हुए वृषाली को मेरे आगमन की सूचना मृणाल ने दे दी होगी। यूं तो पाकशाला में भोजन बनाने के लिए अनेक सेविकाएं थीं, परंतु फिर भी मेरी रुचि के विशेष व्यंजन वृषाली स्वयं पकाकर तैयार करती थी। मृणाल ने सूचना पाते ही वह झटपट महल में आई। मैंने सिर से मुकुट उतार लिया था, वह मेरे हाथ में था। आगे बढ़कर मेरे हाथ से मुकुट लेती हुई वह बोली, आज क्या इतनी देर तक सभा का कामकाज चल रहा था? नहीं वृषाली, गुरुपुत्र के साथ आज पैदल ही नगर घूमने चला गया। अश्वत्थामा का नाम सुनते ही उसकी प्रश्नावली रुक गई। क्रीट उसने धीरे से लकड़ी के आसन में जमा दिया। भोजन के थाल लगने की सूचना देकर मृणाल पिताजी को बुलाने चली गई। उनका हाथ पकड़कर वह धीरे धीरे उनको ले आई। उनके पीछे पीछे वृषसेन, प्रसेन, भानुसेन, सुशर्मा, सुषेण, चित्रसेन सभी आ गए। विगत 14 वर्षों से नित्य ऐसा ही होता रहा था। हम सब पुरुष लोग एक स्थान पर बैठकर भोजन करते थे। पिताजी जब पहला कौर ले लेते तभी अन्य सब प्रारंभ करते थे। हमारे बाद स्त्रियों को पंक्ति बैठती थी। वे भी जब तक राधा माता पहला कौर नहीं ले लेती तब तक अन्न को स्पर्श नहीं करती थी। वृषाली प्रतिदिन नए नए व्यंजन तैयार करवाती थी। भोजन के संदर्भ में सब उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे। कभी वह अपूप, परिवाप, पक्ति, क्षीररोदन आदि पदार्थ बनवाती। कभी कभी गोरस में प्लाशुक, मदगोदन आदि तैयार करवाती। इनके अतिरिक्त अमीक्षा, दधि, नवनीत, पयस्य, पीयूध, फास्ट आदि गाय के दूध के विविध पदार्थ होते। मुझको अपूप और नवनीत ये दो पदार्थ बड़े अच्छे लगते। उनको भोजन में बार बार देखकर शोण तिरछी दृष्टि से मेरी ओर देखता हुआ वृषाली से कहता, भाभी जी, बार बार खाने के कारण ये अपूप अब हमको भी अच्छे लगने लगे हैं। अब ये वास्तविक रसिक के भाग में कम ही आएंगे। और तब दूसरे दिन भोजन में शोण का प्रिय पदार्थ क्षीरोदन अवश्य होता। कभी कभी मालढोक पक्षी के सुस्वाद मांस का रस भी होता। सत्यसेन कहाँ है? वह पंक्ति में दिखाई नहीं दिया इसलिए मैंने पूछा। उसकी पत्नी पुष्पवती ने सिर झुकाकर कहा, कुरुओं का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर मदर देश की राजधानी शाकल नगर को गए हैं। वे मदरराज शल्य से मिलकर लौटने में उनको 8 दिन तो लग ही जाएंगे। अब 8 दिन तक पंक्ति में उसकी थाली रखी जाएगी और फिर उसका भोजन ज्यों का त्यों गाय को दे दिया जाएगा। परंतु मेरा मन भोजन की ओर नहीं था और सब बड़े स्वाद से खाद्य पदार्थों पर हाथ मार रहे थे। केवल शोण ही यह जान सका कि मैं नित्य की तरह भोजन नहीं कर रहा हूँ। उसने विशाली से कहा भी, भाभी जी, सब लोग यह कहते हैं ना कि पुत्र प्राप्ति के बाद स्त्रियों का पति पर प्रेम कम हो जाता है, यह मिथ्या नहीं है? नहीं तो भैया आज जिस प्रकार भोजन कर रहे हैं यह आप अवश्य जान जाते। नहीं शोण, उसकी कोई भूल नहीं है, मैं उसको टोकता हुआ बोला। क्यों वसु, आज तो अपना प्रिय पदार्थ खाने में भी तुम्हारी रुचि नहीं दिखाती? पिताजी ने आखिर पूछ ही लिया। नहीं तात, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ, उसको सुनकर आपको भी आश्चर्य होगा। कैसा प्रश्न? छठे पांडव का। आपको यह ज्ञात है क्या कि पांडव 5 नहीं 6 हैं? सागवान के पत्ते पर जैसे शिराएं होती हैं वैसे ही घने सिकुड़नों से भरे हुए उनके मस्तक को देखकर मैंने पूछा। मुख में रखा हुआ कौर निकलकर उत्तर देने के लिए उन्होंने मुंह खोला, परंतु उनमें से कुछ कहते न बना। तत्क्षण उनकी आंखों में पानी आ गया। विशाल ने झटपट आगे बढ़कर जल का चषक उनके होठों से लगा लिया। पानी का एक घूंट भरते उनका कंठ साफ हो गया। तुमसे किसने कहा? यह कांपते हुए आवाज में उन्होंने कहा। अकेले मुझे ही नहीं, सारे सभागृह को पिता माँ ने आज बताया है। पितामह ने? तब यह सत्य ही होगा, पांडव 5 नहीं होंगे। इतना ही नहीं, कौरव या पांडव इनमें से कोई भी कुरुकुल का नहीं है, यह भी आज उन्होंने कहा। उनकी इस कथन से अब सचमुच राज सिंहासन भुजदंड के बल पर हल होने वाला प्रश्न बन गया। वसु, जब पितामह ने कहा है तब यह भी सत्य ही होगा। आज एक और सत्य मैं पहली बार तुमको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अखाड़े में सबने तुझको चिढ़ाया था और मैंने चुपचाप सहन किया था। वे क्षण भर रुके। उनका कथन सुनकर मैंने कानों के प्रत्यंचा तान दी। वसु, सुतपुत्र कहकर सबने तेरा अपमान किया और इसीलिए तूने बड़े धैर्य से सबका सामना किया। आज राजभवन में महामंत्री के रूप में विदुर जी का कितना सम्मान है, उनका शब्द कभी खाली नहीं जाता। उनके वे तीन वाक्य मुझको असंबद्ध लगे, फिर भी मैंने कहा, हाँ तो, परंतु वे भी कुरुकुल के नहीं है। स्वयं पितामह ने कहा है, उन्होंने कहा, आज हस्तिनापुर में कुरुराज के वंश का अकेला मैं ही अंतिम वंशज हूँ। नहीं वसु, यह सत्य है कि महामंत्री विदुर दासी पुत्र हैं, परंतु पितामह अकेले ही अंतिम कुरु हैं, यह पूर्ण सत्य नहीं है। एक और कुरु जिसकी धमनियों में कुरुवंश का रक्त दौड़ रहा है, इस हस्तिनापुर में ही है, परंतु सामाजिक परंपरा से बधा हुआ और साधारण बन रहा है। कौन है वह अंतिम कुरु? मैंने आश्चर्य से भौं हैं तानते हुए पूछा। विशाली ने जो चषक रख दिया उसको उठाकर एक घोट भरकर वे भर्राए हुए आवाज में बोले, मैं। आप? हाँ, मेरे पिता सत्कर्मा दिग्विजयी कुरु ययाति के वंशज थे, परंतु माता की ओर से वे सारथी थे। इस नगर में दासीपुत्र विदुर को महामंत्री पद प्राप्त हो गया, परंतु ययाति के वंशज अधीरथ को अश्वशाला ही मिली। वसु, यह सत्य है, तो अंगराज हो गया है। बस यही देखकर मैं अपनों को धन्य मान लेता हूँ। कुछ रुक कर उन्होंने फिर एक घोट पानी पिया। जिस समय जिस रहस्य को जीवन भर छिपा रखा था, वह अपना जन्म रहस्य मेरे संतोष के लिए उन्होंने मुझको बता दिया था। मैं उसी समय भोजन छोड़कर उठ खड़ा हुआ। हम ययाति महाराज के वंशज हैं। यह सत्य मेरे मन को कहीं सुख पहुंचा रहा था, परंतु उससे मन प्रफुल्लित हो जाए इतना आनंद मुझे नहीं हो रहा था। अब मेरा मन इतना भोला भाला नहीं रहा था कि हर एक आश्चर्यजनक घटना पर प्रसन्नता से नाच उठे। हाथ धोकर शरण गृह में जाकर पलंग पर लेटा। अश्वत्थामा ने सहज ही तो विचार व्यक्त किया था, उस पर बार बार मेरा मन स्थिर हो जाता था। पीपल के पौधों को पाषाण की दरार में भी उल्लास से पढ़ते हुए देखकर उसने कहा था, पाषाण के प्रतिकूल मस्तक पर पैर जमाकर वह पौधा मानो कह रहा है, मुझको जीना है, वायु के झोंकों से जूझना है। मैंने भी निश्चय कर लिया कि अपने लिए उस पौधों को आदर्श मानूंगा। परिस्थिति का रोना रोने में कोई सार नहीं था। 20 अश्वत्थामा के जीवन विषयक तत्वज्ञान पर मैंने रात भर विचार किया। उसका तत्वज्ञान सुनने में बड़ा मधुर था, परंतु संसार के कितने लोग तत्वज्ञान को उपयोग में लाते हैं। संसार को प्रत्येक के सहयोग की आवश्यकता होती है, परंतु संसार अपना सहयोग किसी को देने को तैयार नहीं होता। अपने पूरे जीवन भर मैंने यही अनुभव किया था। पांडव वनवास पर थे, लेकिन वे धार्मिक यात्रा कर पुण्य कमाने थोड़े ही गए थे। 13 वर्ष बाद वे निश्चित ही लौटेंगे। वे चोट खाए हुए 5 भुजंग थे। 13 वर्ष अरण्य में छिपकर फिर भी कभी न कभी प्रकट होकर वे दुर्योधन के साथ ही कर्ण के पैर को भी डसेंगे ही। वे अरण्य में चले गए हैं यह सोचकर यदि मैं चुपचाप बैठा रहा तो कल को वह एक महान मूर्खता ही कहलाती। जीवन कला में पहले तो किसी से शत्रुता उत्पन्न न होने दें और फिर होने के बाद उसे सुलगती न रहने दें। कभी न कभी उस मवाद पड़ ही जाता है, कर्ण अथवा पांडव, यह एक ही विकल्प मुझको स्वीकार था। पांडवों के भय का सदैव लटकता हुआ खड्ग मैं दुर्योधन के मस्तक पर रखना नहीं चाहता था। पितामह गरज गरज कर कह रहे थे कि राज्य का आधा भाग पांडवों को दे दो। मैं उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत नहीं था। राज्य अखंड रहना चाहिए, फिर वह कौरवों का हो या पांडवों का। आगे बढ़कर कुछ करने का जब समय था, उस समय तो पितामह चुप रहे थे, परंतु आज यह जानकर कि पाश पांडवों के कंठ को घेर रहा है, वे उनके प्रेम से व्याकुल होकर बोल उठे हैं। सभागृह के सभी सभासदों का उत्साह उन्होंने समाप्त कर दिया था, परंतु कर्ण उनके शब्द फेंकने वाले भुशुंडी में कभी नहीं फंस सकता। सभागृह का कोई भी योद्धा भले ही साथ न दे, उसकी चिंता न कर मैं अकेला ही अब पांडवों के विरुद्ध अभियान करने वाला था। वे 5 वीर कैसे हैं या मैं एक बार देखना चाहता था। अपना निश्चय दुर्योधन के कानों तक पहुंचाने के लिए मैं अवसर की प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह राजभवन में अकेले कभी मिलता ही नहीं था। शकुनी मामा, दुशासन, प्रभंजन, आमात्य, महारानी भानुमति, युराग्य दुशला देवी, सभागृह के अन्य कुरुयोद्धा, इनमें से कोई न कोई उसको सदा घेरे रहता था। जो कुछ कहना चाहता था वह कहने के लिए मुझको एकांत नहीं मिल रहा था। उससे एकांत में मिलने की संभावना केवल एक ही योजना में पूरी हो सकती थी, और वह योजना थी मृगया की। इसीलिए शोण को भेजकर मैंने वर्णावत के अरण्य में मृगया जाने की अपनी इच्छा उस तक पहुंचाई, जैसे उसे भी यह अच्छा लगा। 2-3 दिन बाद हम लोग मृगया के लिए राजभवन से बाहर जाने वाले थे। हमें गंगा और इक्षुमती, इन दोनों नदियों के पार उस इंद्रप्रस्थ की सीमा पर स्थित वारणावत के घने अरण्य में जाना था, जहाँ कोई भी मृग्या के लिए राजभवन से बाहर निकले उसको बिना मृग्या लाए राजभवन में नहीं लौटना यह परंपरा थी। किसी किसी योद्धा को तो इसे पालन करने के लिए मृग्या की खोज में एक एक महीने तक अरण्य में भटकना पड़ा था।